नमस्कार भारत, 28 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं रेहान फतल। उग्र इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका में नहीं घुसने देंगे डोनाल्ड ट्रंप।
आई एम एस्टैब्लिशिंग न्यू वेटिंग मेजर्स टू कीप रैडिकल इस्लामिक टेररिस्ट।
विवेचना में आज याद करेंगे रिदम किंग कहे जाने वाले ओपी नैयर को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर।
एक वो जो गाना बनाया था इन्होंने फिल्म सीआईडी में, जाता कहाँ है दीवाने, उसमें एक वर्ड है फिफी, वो कहा कि साहब ये जो वर्ड है ये वो नाजेबा है, नाशायस्ता है, बच्चों पे ज्यादा इसका बुरा असर होगा, तो वो साहब वो उन्होंने कहा पूरा गाना बैन कर दिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अपूर्व कृष्ण से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वाले आप्रवासियों की अत्यंत सख्त जांच किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में जनरल जेम्स मैटिस को रक्षा मंत्री बनाए जाने के शपथ समारोह के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की और कहा कि इसका उद्देश्य कट्टर इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका से दूर रखना है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इस अत्यंत सख्त जाँच में क्या होगा। उन्होंने इसके साथ ही सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश समृद्धि और कानून के शासन के प्रकाश स्तंभ हैं और वो चाहते हैं कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद उनके बीच फौरन एक व्यापारिक संधि हो। टेरेसा मे ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें नेटो के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। ट्रंप ने हाल ही में नेटो को एक अप्रासंगिक हो चुका सैन्य गठबंधन बताया था।
मिस्टर प्रेसिडेंट, आई थिंक यू सेड यू कंफर्म दैट यू आर 100% बिहाइंड नेटो।
मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने कहा कि आप नेटो के साथ 100% खड़े हैं, मगर हम लोगों ने नेटो के महत्व के बारे में और चर्चा की कि इसे पारंपरिक लड़ाइयों के साथ साथ आतंकवाद और साइबर युद्ध से लड़ने के लिए तैयार किया जाए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नेटो के साथ एक घंटे तक फोन पर बात की है। ये बातचीत मेक्सिको के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरा रद्द करने के एक दिन बाद हुई है। उन्होंने ये फैसला दोनों देशों की सीमा पर उस दीवार को बनाए जाने के खर्च को लेकर हुई नोकझोंक के बाद किया जिसे ट्रंप बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने बातचीत को दोस्ताना बताया और कहा कि अगले कुछ महीनों में मेक्सिको के साथ इस संबंध में और बात होगी। मेक्सिको सरकार ने कहा है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे अब सार्वजनिक रूप से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि दीवार का खर्च कौन उठाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वाशिंगटन में एक गर्भपात विरोधी रैली में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे जज का नाम आगे करेंगे जो गर्भपात का विरोधी है। वे अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो 1973 में गर्भपात को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में होने वाली सालाना रैली में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार से आंखें मूंद ली थीं, मगर अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उपराष्ट्रपति पेंस ने रैली में कहा कि अब एक नए राष्ट्रपति के आने और संसद के दोनों सदनों के गर्भपात का विरोधी होने से धारा पलट रही है।
Three generations hence, because of all of you,
आज कई पीढ़ियों के बाद आप सबके कारण और उन हजारों लोगों के साथ जो हमारे साथ पूरे देश में हो रही रैलियों में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका में जिंदगी फिर जीत रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। मॉरिशस की दो मुख्य विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के अपने बेटे को सत्ता दिए जाने के कदम के विरोध में राजधानी पोर्ट लुई में एक बड़ी रैली की है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी और लेबर पार्टी ने नए नेता के चयन के लिए चुनाव करवाने की मांग की। सोमवार को 86 वर्षीय नेता अनिरुद्ध जगन्नाथ ने इस्तीफा देकर कमान अपने बेटे प्रविंद को सौंप दी थी और ये कहा था कि अब ये नए नेताओं का वक्त है। और फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चांद ने कहा है कि उन्होंने हवाई में एक मुकदमे को वापस ले लिया है जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ हिस्सों को उनके निजी स्टेट को बेचना पड़ता। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उग्र इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। उन्होंने नए अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल जेम्स मैटिस के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पेंटागन में इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद बोलते हुए ट्रंप ने कहा,
Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists.
मैं उग्र इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए नए कदम उठा रहा हूं। हम उनको यहां नहीं चाहते। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन लोगों को हम अपने देश में न घुसने दें जिनसे हमारे सैनिक विदेशों में लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस बीच ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पहली विदेशी राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। थोड़ी देर पहले मैंने वॉशिंगटन फोन कर बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस नए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसके बारे में क्या जानकारी है उनके पास।
देखें, राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों में उनका ये सरकारी फरमान या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चरमपंथी इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर रखेगा। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो खतरे जिनका अमेरिकी फौजी देश के बाहर सामना करते हैं वो देश के अंदर नहीं घुस सके। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस आदेश का विस्तृत दस्तावेज नहीं जारी किया है, लेकिन इसका एक ड्राफ्ट जो 2-3 दिन पहले मीडिया को लीक हुआ था उसमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन, ये जो 7 देश हैं, इनसे आने वालों को वीजा दिए जाने पर कम से कम 30 दिनों तक रोक लगाने की बात थी और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश करने पर कम से कम 120 दिनों की रोक लगाने की बात थी। लेकिन फिलहाल हम इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जो असली दस्तावेज है हो सकता है कि उसमें फेरबदल भी हो। 2 दिन पहले उन्होंने ABC चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वालों के वीजा जांच की तरफ इशारा किया था और ये पूरा मामला उनके चुनावी वायदे का हिस्सा है और वो इस तरह के आदेश जारी करके वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इस आदेश का ये मतलब नहीं कि ये लागू हो ही जाएगा, इसे कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है। ओबामा ने, आपको याद होगा कि कुर्सी संभालने के 2 दिनों के अंदर ही गुआंतानामो जेल बंद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था लेकिन वो 8 सालों के बाद भी वो नहीं करवा पाए।
तो ये तो रही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी वॉशिंगटन में हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, उसके क्या विवरण हैं?
देखें, पिछले 60 सालों से एंग्लो अमेरिकन साझेदारी ब्रिटानी विदेश नीति की धुरी रही है और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे की इस यात्रा का सबसे अहम उद्देश्य भी यही था कि उसे जारी रखते हुए ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन के लिए एक नई व्यापार संधि की रूपरेखा पर बात हो। दोनों ही नेताओं ने काफी गर्मजोशी का इजहार किया और टेरेसा मे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक तरह से ऐलान कर दिया कि ट्रंप 100% नेटो गठबंधन के साथ है। आपको याद होगा कि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने नेटो गठबंधन की उपयोगिता पर एक तरह से सवाल उठाए थे। रूस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं अभी, उस पर भी टेरेसा मे अडिग नजर आई कि जब तक रूस अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है वो जारी रहने चाहिए, लेकिन वहां ट्रंप ने उस पर थोड़े से लचीलेपन की गुंजाइश रखी अपने बयानों में। गौरतलब है कि ब्रिटेन में अपने चुनावी बयानों की वजह से ट्रंप की छवि बेहद खराब है और ऐसे में टेरेसा मे की चुनौती थी कि पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए रिश्तों को बेहतर करने के लिए वो गर्मजोशी बढ़ाएं और ट्रंप की चुनौती थी कि अमेरिका के निकटतम सहयोगी या मित्र देश के साथ अगर वो रिश्तों को बेहतर दिशा में नहीं ले जा सके तो फिर किसी और देश के साथ वो किस तरह से निभाएंगे। और जानकारों की राय में वहां दोनों ही नेता काफी हद तक कामयाब नजर आए इस दौरे में।
ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही कल पंजाब में थे। राहुल गांधी ने पंजाब में 3 दिन के चुनाव प्रचार की शुरुआत मजीठा सीट से की है। मजीठा विधानसभा सीट को काफी हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है क्योंकि यहां से पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कि साले विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के उम्मीदवार हैं। विक्रम सिंह मजीठिया पंजाब के राजस्व मंत्री भी हैं। पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब में हो रहे चुनावी दंगल में यूं तो चुनाव 117 विधानसभा सीट्स पर होना है, पर पंजाब के माझा हिस्से के मजीठा विधानसभा का महत्व इस वक्त केंद्र बंधु बना हुआ है। उसका कारण यहाँ के मौजूदा विधायक विक्रम सिंह मजीठिया प्रमुख तौर पर हैं। मजीठिया पंजाब सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के साला साहब भी हैं। इस समय मजीठा विधानसभा में तिकोनी फाइट बनी हुई है। श्रोमणी अकाली दल के विधायक विक्रम सिंह मजीठिया के सामने फायर ब्रांड कहे जाने वाले सुखजिंदर राज सिंह लाली और आम आदमी पार्टी के हिम्मत सिंह शेरगिल डटे हुए हैं। मजीठा उस वक्त सुर्खियों में आया जब ड्रग माफिया के केस में फंसे भोला ने मजीठिया का नाम मीडिया के सामने लिया। हालांकि मजीठिया की इन्वॉल्वमेंट इस ड्रग केस में अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह डाला था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वो विक्रम मजीठिया को 3 महीने के भीतर जेल भेज देंगे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हिम्मत सिंह शेरगिल कहते हैं,
देखिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी का वादा है कि नशे के तस्कर विक्रम मजीठिया को कॉलर से पकड़ के जेल में डालेंगे। मजीठिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, तो वादा है कि हर परिवार को रोजगार दिया जाएगा।
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज अपनी पहली पॉलिटिकल रैली का स्थान मजीठिया ही चुना और आज उन्होंने मजीठिया में अपनी रैली के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी का भावी CM घोषित भी किया। कांग्रेस के कैंडिडेट सुखजिंदर राज सिंह लाली BBC को बताते हैं,
और ये तो सबसे पहली बात है क्योंकि ड्रग से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आज राहुल जी मजीठा आए थे, यही बेसिक कारण था कि मजीठा का से पहले उन्होंने जो उनकी कंपेन शुरू नहीं थी क्योंकि ड्रग पे मैस्कर राहुल है, उन्होंने मजीठा में आज हम बात की थी और ये भी कहा था कि इनको हम सबको जो जिम्मेदार है उनको पकड़ेंगे और बच्चों को ठीक करेंगे।
उधर विक्रम सिंह मजीठिया अपने यहाँ मजीठा में हुई डेवलपमेंट को अपनी जीत का आधार मानते हैं। पंजाब में चुनाव 4 फरवरी को होने हैं और ऐसा लगता है कि वोटर भी अपनी दिल की बात 4 तारीख को वैलेट बॉक्स में ही बंद कर देगा।
ये थे पंजाब की चुनाव प्रचार पर एक रिपोर्ट। और अब आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को प्रमुख स्थान दिया गया है। अपूर्व कृष्ण सारे अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए क्या कहती हैं आज की सुर्खियां।
जी रेहान, ये हिंदू अखबार है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जालंधर में हुई रैली का जिक्र है। अखबार लिखता है कि उन्होंने वहां कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज बताया क्योंकि ये उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन साथ ही इस रैली में राजनीतिक रूप से संवेदनशील एक मामला सतलज यमुना नहर, इसकी उन्होंने बात की और कहा कि पंजाब को सिंचाई के लिए इसके पानी के इस्तेमाल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी का जो पानी पाकिस्तान में बर्बाद होता है उसे वापस पंजाब लाया जाएगा। और इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि यौन प्रताड़ना के आरोपों के बाद मेघालय के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले षणमुगनाथन ने इस्तीफा देने से पहले एक महिला उम्मीदवार को सामान्य प्रक्रिया से अलग जाकर उसकी नियुक्ति करवाई। अखबार ने दस्तावेजों और कुछ खास लोगों से बात कर अपनी खास रिपोर्ट प्रकाशित की है और सूत्रों के हवाले से लिखा है कि षणमुगनाथन ने अपना इस्तीफा ईटानगर से भेजा और फिर कल वो गुवाहाटी होते हुए दिल्ली चले गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है रेहन कि भारत में अब 18 वर्ष की उम्र के 99% से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हो गए हैं, क्योंकि अब तक 111 करोड़ लोगों ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया है। और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि अब हो सकता है कि लोग ATM से एक ही बार में 24,000 रुपए निकाल पाएंगे। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नोटबंदी के 3 महीने बाद नकद की किल्लत में सुधार को देखते हुए सरकार इस बारे में विचार कर रही है। हालांकि अखबार के अनुसार हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा में फरवरी के अंत तक कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। और इसके अलावा कल जयपुर में संजय लीला भंसाली, उनके ऊपर उनकी फिल्म पद्मावती से नाराज़ कुछ लोगों के उन पर हमला करने की भी खबर सभी अखबारों में है रेहान।
बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व कृष्ण आपका। अपने ज़माने में मशहूर संगीतकार ओपी नैयर के बारे में कहा जाता था कि उनके व्यक्तित्व की तरह उनका संगीत भी अलग छाप लिए होता था। जो शोखी तेवर और बांकपन उनके मिजाज में था उसी की झलक हमें उनके संगीत में दिखाई देती है। आशा भोसले की प्रतिभा को तराशने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता था तो वो थे ओपी नैयर। उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर आइए करते हैं उन्हें याद विवेचना में।
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।
इस जैसे कितने ही गीतों को संगीत देने वाले ओमकार प्रसाद मदन गोपाल नैयर को हिंदी फिल्म संगीत का मोहम्मद अली कहा जाता था। फिल्म संगीत के रसिया उनकी हर धुन में एक खास किस्म का पंच देने की अदा पर मर मिटते थे। कहीं उनको रिदम किंग कहा जाता था तो कहीं ताल का बादशाह। ओपी नैयर को छोड़कर किसी भी भारतीय संगीतकार ने लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल किए बिना इतना सुरीला संगीत नहीं दिया है।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
1926 में लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने 1952 में फिल्म आसमान से अपना संगीत करियर शुरू किया था, लेकिन उनको राष्ट्रीय पहचान मिली थी गुरुदत्त की फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और तुम सा नहीं देखा से। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले और इस समय दुबई में रह रहे सिराज हाँ बताते हैं।
साहब बहुत बहुत ज्यादा गहरा उनका जो रिलेशनशिप थी। गुरुदत्त का जो इंट्रोडक्शन नैयर साहब का गुरुदत्त से कराया था वो गीता दत्त ने कराया था। उस वक्त वो फियांसे थी, उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। गीता दत्त ने गुरुदत्त से कहा कि भाई अगली फिल्म के लिए आप, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि किसको आपने चूज किया, उन्होंने कहा अगली फिल्म के लिए आप इनको लीजिएगा, ये दिस मैन इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो गुरुदत्त ने उनको एक्सेप्ट किया, वो फिर आर पार फिर बनी, फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और कितनी और फिल्में बनी। बहुत ज्यादा उन दोनों का क्लोज था। फिर गीता दत्त बीच में बड़ी फेवरेट सिंगर थी शुरू के अर्ली ईयर्स में। कोई मेरी उनके साथ मीटिंग नहीं होती थी ऐसी मुगर जिसमें गुरुदत्त का कहीं नहीं कहीं किसी किसी वजह से उनका नाम नहीं आ जाता था हमारे कॉन्वर्सेशन में।
अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी,
किसी की अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
50 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो ने ओपी नैयर के कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनकी नजर में वो कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
एक वो जो गाना बनाया था इन्होंने फिल्म सीआईडी में, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ सब, तो उसमें एक वर्ड है फिफी, FIFI, तो वो कहा कि साहब ये जो वर्ड है ये वो नाजेबा है, नाशायस्ता है, बच्चों पे यंग लोगों पे ज्यादा इसका बुरा असर होगा, तो वो साहब वो उन्होंने कहा पूरा गाना बैन कर दिया। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब आप देखिए कि कैसे कैसे फिल्दी वर्ड्स लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी जबान में, मगर उस वक्त का बात थी तो ये हो गया। हालांकि इसको कोई बुरा मतलब नहीं था। बहरहाल अच्छी बात ये थी कि रेडियो सिलोन वाले वो उस गाने को करते थे और वो नंबर वन गाना रहा।
आशा भोसले को आशा भोसले ओपी नैयर ने बनाया। उन्होंने आशा की आवाज की वर्सेटैलिटी और रेंज का पूरा फायदा उठाया। उनके रोमानी संबंधों ने भी उनके गानों में एक खास किस्म की चिंगारी भर दी।
बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी किसी का नहीं हुआ है, ना हीरो हीरोइन का, तो ये तो एक संगीत का और सिंगर का था, मगर उनके जो था रिलेशनशिप वो उसमें रोमांस में बदल गई। यानी 14 साल 58 से लेके 1972 तक, यानी बहुत ज्यादा इंटेंस। और आप ये सोचिए कि आप इन हिंदुस्तान में मुंबई में एक मैरिड आदमी जिसके 4 बच्चे हैं और एक जो डाइवोर्सी है, वो खुले आम ये लोग फिरा करते थे। नैयर साहब का एक वो अपार्टमेंट था, पेंट हाउस था, जिसमें ये लोग रिहर्सल करते थे। नैयर साहब ने एक बड़ा उनका फेवरेट किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा था, लव इज ब्लाइंड, जो आप लोग आमतौर पे कहते हैं, उन्होंने कहा टू मी लव वाज नॉट जस्ट ब्लाइंड, इट वाज आल्सो डेफ, क्योंकि आशा की आवाज के बाद में बाकी और आवाजों को मैं सुन नहीं पाता था। तो इसी वजह से शमशाद बेगम और गीता दत्त वगैरह से किनारा कशी इख्तियार कर ली।
मशहूर संगीत इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब ए जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं कि ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ एक तरह से ऑब्सेशन था।
ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति आसक्ति इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता की, क्या आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। ये वही गीता दत्त थीं जिन्होंने ओपी नैयर की गुरुदत्त से पहले पहल सिफारिश की थी। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया।
इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया जिसे 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा उस समारोह में नहीं गई। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली, लेकिन घर वापस लौटते हुए उन्होंने वो ट्रॉफी सड़क पर फेंक दी।
चैन से हमको कभी, वो आखिरी गाना उनका जरूर था, मगर आप ये देखिए कि उस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसमें आशा भोसले जो थी वो अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने भी नहीं गई कि उनको पता था कि नैयर साहब वहाँ होंगे। नैयर साहब वो सो ग्रेशियस कि उन्होंने उनके बिहाफ पे वो अवार्ड एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट तो कर लिया उन्होंने अवार्ड, उनके साथ जो लिरिसिस्ट SH बिहारी उनके साथ थे, ये लोग दोनों गाड़ी में आ रहे थे। इस वक्त रात के आप इमेजिन कीजिए कि सन्नाटा था जिस सड़क से आ रहे थे, और उन्होंने शीशा नीचे किया उन्होंने, और वो ट्रॉफी जो उस वक्त तक अपने हाथ में पकड़े हुए थे उन्होंने खिड़की से बाहर फेंकी जो खंबे से जाकर टकराई, और वो खंबे की आखिरी जो उन्हें आवाज सुनी थी वो जैसे कोई चीज चूरा चूर हो जाती है। तो उन्होंने बिहारी साहब से कहा, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज इस आवाज से ये मैंने जो आवाज सुनी है, आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर।
ओपी नैयर ने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर से एक भी गाना नहीं गवाया। इसके पीछे क्या वजह थी? ओपी नैयर के एक और करीबी रोहन पुसलकर बताते हैं।
ये उस टाइम की और अपनी हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो एम्प्रेस है लता मंगेशकर जी है, उनके साथ एक भी गाना नहीं हुआ उनका, और फिर भी उस टाइम में इतने ज्यादा मशहूर हुए। ये डिसीजन लेना कोई इजी चीज नहीं है। उनका ये कहना था कि जो उनको आवाज चाहिए थी, जो उनको जो एक कैरेक्टर वॉइस का चाहिए था, वो उनके पास नहीं था, और बस यही कारण है। नो रूमर्स, नो नथिंग, वो सूट नहीं किया मेरी म्यूजिक को, मैंने नहीं लिया।
60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई, और कुछ समय के लिए उन्होंने रफी से कोई गाना नहीं गवाया।
रफी साहब भी वक्त के पाबंद थे और नैयर साहब भी वक्त के पाबंद थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि 70 म्यूजिशियंस हैं, वो रुके हुए हैं, उन्होंने टाइम रुका हुआ है, रफी साहब का इंतजार हो रहा है। रफी साहब उस जमाने में नेचुरली सेलफोन वगैरह कोई नहीं थे। रफी साहब जैसे लेट बंदा हो जाए तो नेचुरली वो तो खैर सब लोग बैठे हैं, नैयर साहब भी बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। रफी साहब कोई एक घंटे के बाद वहां आए और उन्होंने कहा कि साहब सॉरी, मेरी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं नैयर साहब देखो कोई बात नहीं। के बाद उन्होंने म्यूजिशियन से कहा कि भाई शुरू करो। अब उसके बाद के रफी साहब क्योंकि इतने ऑनेस्ट थे, तो एक म्यूजिशियन था, उन्होंने पूछा कि रफी साहब वो कहाँ प्रॉब्लम, क्या डिले कहाँ हो गई थी। अब आप सोचिए कि ये पंच लाइन ये है, तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल वो शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग थी और वहां कुछ ये हो गया। शंकर जयकिशन का जैसे नाम उन्होंने सुना नैयर साहब ने, उन्होंने कहा क्या शंकर जयकिशन, उसकी वजह से तुम्हारे एक घंटे तुम आए और मैं और तुमने फोन भी नहीं किया। बस दैट वॉज इट। ही सेड नो, नो मोर रिकॉर्डिंग। रफी साहब अपने घर जाइए, म्यूजिशियन से कहा अपने घर जाएं, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ डूइंग एनी रिकॉर्डिंग टुडे। वो गाना जो था उन्होंने फिर महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया। इसके बाद सेवरल ईयर्स रफी साहब का साथ नहीं। रफी साहब भी थोड़े से बददिल हो गए, नैयर साहब ने तो इतनी बड़ी बात कर दी थी उनके साथ। रफी साहब वॉज वेरी हर्ट।
आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
1989 में अचानक ओपी नैयर ने अपना घर छोड़ दिया और थाने के नखवा परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे। नखवा परिवार के साथ ओपी नैयर के रहने की कहानी एक एसटीडी टेलीफोन बूथ पर शुरू हुई थी। उस बूथ को चलाया करती थी रानी नखवा।
तो वो सुबह 7 बजे मैंने खोला था वो दुकान और मैं मेरा काम कर रही थी, तो वो आए लुंगी और कुर्ता पहन के ऊंचे पूरे एकदम गोरे चिट्टे। उन्होंने बोला बेटा मुझे फोन करना है, और फिर उन्होंने मुझे बताया बेटा मेरे लिए कोई ऐसे घर ढूंढो फैमिली हो, पेंगेस रहना है मुझे। मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं, एक पल भी जल्दी सोचा, आप मेरे घर आएंगे। उन्होंने वो देखते रह गए, तुमने घर में पूछा नहीं बेटा अभी तक, मतलब मैं पूछती हूँ आप मेरे घर में आएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ ना उसको मैं फोन करने को बोलता हूँ तुम्हें, और वो उसको पता देकर लिखवा देना तुम्हारा। तो ठीक है, फिर दूसरे दिन शाम को घर पे आ गए मैं 4 बजे।
नैयर रानी के घर पर ताउम्र 12 सालों तक रहे। वो परिवार के काम में हाथ बटाते, यहाँ तक कि रसोई घर में जाकर सब्जियाँ भी काटते।
मैं तो वो 5 बजे उठ जाते थे, वॉक के लिए जाते थे, 1 घंटा वॉक करते थे, 5-6 बजे आते थे वापस वॉक करने, मैं भी उनके साथ जाती थी, फिर हम लोग वापस आते थे, फिर चाय बनती थी उनके लिए। उन्होंने चाय भी बनाने सिखाई उनके टाइप की, एक कप चाय में वो मतलब चाय कितनी उबालनी है, उबालनी भी नहीं है, वो उबलते हुए पानी में से डालनी है चाय पत्ती। उर्दू में रामायण थी उनके पास, रामायण पढ़ते थे, दुख भंजनी साहब पढ़ते थे बुक। फिर खाना खाते दोपहर को थोड़े से सो के, फिर शाम को पिक्चर देखते थे, वो भी इंग्लिश, हिंदी बिल्कुल कुछ देखते नहीं थे। शाम को फिर जल्दी सो जाते थे 8:30-9 बजे, और खाना भी बनाना उन्होंने हमें सिखाया। मम्मी को भी डांटते थे, देर से आए तो सबको ही डांटते थे, कैसी जिंदगी जीनी है हमने उनसे सीखी है। वो राजा की तरह ही जीते थे, शराब भी पीते थे तो वो ब्लैक लेबल विस्की पीते थे, उसके भी बक्से भरे रहते थे, कपड़े भी पहनेंगे तो कला निकेतन से लुंगी निकाल लेके आएंगे, खादी ग्रामोद्योग से उनके शर्ट्स बनते थे, हर एक चीज का स्टाइल था उनका।
ओपी नैयर का जितना उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा उतना शायद किसी का नहीं रहा। उन्होंने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ और फिर गुमनामी की गहराई में भी चले गए। उन पर एक विद्रोही और अपरंपरागत संगीतकार होने का तमगा भी लगा। 81 वर्ष की आयु में ओपी नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका संगीत कभी नहीं मर सकता, वो कालजयी है।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या।
ओपी नैयर की 10वीं पुण्यतिथि पर खास विवेचना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से समाचार है कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग के फाइनल्स तय हो गए हैं। आज महिला वर्ग में विलियम्स बहनों का मुकाबला होगा आपस में, और कल फाइनल में रॉजर फेडरर और नडाल भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वाले आप्रवासियों की अत्यंत सख्त जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य कट्टर इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका से दूर रखना है। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नेटो के साथ भी 1 घंटे तक फोन पर बात की है। ये बातचीत मेक्सिको के राष्ट्रपति के अमरीका दौरा रद्द कर देने के 1 दिन बाद हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वाशिंगटन में एक गर्भपात विरोधी रैली में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे जज का नाम आगे करेंगे जो गर्भपात का विरोधी है। वे अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो 1973 में गर्भपात को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में होने वाली सालाना रैली में शामिल हुए हैं। मॉरिशस की 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने अनिरुद्ध जगन्नाथ के अपने बेटे को सत्ता दिए जाने के कदम के विरोध में राजधानी पोर्ट लुई में एक बड़ी रैली की है।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।